नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये 4थी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।